اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو تاریخ بنایا کرتی ہیں، اور کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کو تاریخ بناتی ہے۔ ایسی ایک شخصیت جناب مختار ثقفی کی ہے کہ جن کو تاریخ نے نہیں بنایا بلکہ انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام قیام سے قیام تک کا موضوع بھی جناب مختار کی شخصیت اور ان کا حسب و نسب اور خاندان ہے۔ آئیے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نجیب الحسن صاحب، تو جناب مختار کی شخصیت اور ان کے خاندان کے حوالے سے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا، بڑی بزرگ شخصیت، تاریخ اسلام میں بھرپور انداز سے اپنا نام اور کارنامہ ثبت کرانے میں بہت بہترین انداز میں کامیاب ہوئے۔ میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے جناب مختار کا تعارف ہو جائے، کیونکہ جب ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو ان کے قیام سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اور میرے خیال میں بہت سارے ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو اس بارے میں شاید بہت کم علم ہو کہ ان کا حسب نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ جس کے بنیاد پر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے انتقام لیا۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب مختار کا نام مختار ابن ابی عبید ثقفی، اور کنی آپ کی ابو اسحاق، آپ کو کیسان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قبیلہ ثقیف، یعنی جو ثقفی آپ کا نام ہے، ان نسبت ہے قبیلہ ثقیف سے۔ قبیلہ ثقیف ایسا قبیلہ ہے جو ایک عرب کا بڑا اور مانا جانا قبیلہ ہے، جس میں بزرگ اور اشراف رہا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شہر طائف میں رہتے تھے۔ اور خاص طور پر قبیلہ ثقیف کے اندر جو بعض بڑی شخصیتیں ہمیں نظر آتی ہیں، پیغمبر اسلام سے بھی رابطے میں تھیں، حتیٰ خود جناب مختار کے دادا عروہ ابن مسعود پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر جناب مختار کے چچا، جناب مختار کے چچا کو سعد بن مسعود ثقفی کو خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے والی بنایا تھا مدائن کا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اب والی رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شخصیتیں ہیں، مثلا محمد بن قاسم ثقفی۔ محمد بن قاسم ثقفی ہم لوگ کے لیے یعنی ایک ایسا نام ہے جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ محمد بن قاسم ہی نے ہندوستان کو فتح کیا، اور یہ بر صغیر میں گویا ایک طرح سے اسلام تیزی کے ساتھ پہنچا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن قاسم کے ذریعے سے پہنچا، لیکن ممکن ہے کہ وہ جو ایک نظریہ ہے کہ
ہمارے یہاں بڑی تاریخ ہے کہ سندھ جو باب الاسلام ہے، اس کے فاتح محمد بن قاسم ہیں، اور اسلام انہی کے زور پہ پھیلا جو انہوں نے وہاں پہ ہندوؤں کو شکست دی۔
ہندوؤں کو شکست جی، البتہ اسلام کے پہنچنے کے اس سے پہلے بھی یعنی تاریخی بعض نقلوں میں ایسا ملتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن اس انداز میں نہیں تھا کہ مثلا فتح کی ہو یا کوئی لشکر گیا ہو، لیکن محمد ابن قاسم کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ وہ انہوں نے لشکر کشی کی اور پھر کفار کو گویا ان کا سامنا کیا، مقابلہ کیا، اور اسلام کی پیشکش ان کے سامنے کی، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ خود مختار کے والد مسعود ابو عبید مسعود ثقفی، یہ بزرگ صحابہ میں سے تھے، اور اس قدر عظیم مرتبت تھے کہ پیغمبر کی شان یعنی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ایک بڑے صحابی کے ساتھ ساتھ ایک شجاع اور دلیر اور بہادر اس زمانے میں مشہور تھے، معروف تھے۔ انہوں نے ہی عراق کو فتح کیا، فارس کو فتح کیا۔ جب جناب مختار 13 سال کے تھے تو ابو عبید نے فارس پر حملہ کیا، فارس کی جنگ میں ابو عبید شہید ہوئے، अहले फारस से जब जंग की, और उसकी दास्तान भी तारीख में इस तरह से मिलती है कि इन लोगों ने, अहले फारस ने हिंदुस्तान से हाथी मंगवाए थे, और बड़े बड़े गोल पैकर हाथी, उनके ऊपर इन्होंने खजूर के दरख्तों की शाखें काट के रख दी थी, उस पर कलर कर दिया था, रंग कर दिया था। जंग में इस्लाम की सिपाह के लिए, इस्लाम के लश्कर के लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, पहली बार उनको इस तरह से सामना हो रहा था कि हाथी हैं और उनको कलर कर दिया है। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, एक टीला सा दिखता था, और फिर हाथियों के गलों में बड़ी बड़ी घंटियां बांध दी थी, जो हिलती थी तो बहुत अजीब तरह की आवाज़ घनघरज पैदा होती थी, तो मुसलमान नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है। तो यही अबू उबैद ने आगे बढ़कर हमला किया, और बाज़ तारीख की नुकुल में मिलता है कि जब हमला किया तो मसलन हाथी जो है एक उसने अपने पैरों के नीचे मसलन दबा दिया, और इस तरह अबू उबैद की शहादत हुई कि
शहादत हो गई।
हाथी ने उनको कुचल दिया। 14वीं हिजरी में अबू उबैद की शहादत है, जसर अबी उबैद उसको फिर कहा जाता है। जनाब मुख्तार के वालिद और उनके चचा के अलावा जो अजीम शख्सियतें हैं, खुद माँ जनाब मुख्तार की माँ अमर बिन वहब की बेटी हैं, दोमा इनका नाम है, अपने ज़माने की मशहूर पाकदामन और बाहया बाइफ़त खातून हैं, मशहूर हैं। और इनके सिलसिले में एक ये भी मिलता है कि खुद जब शादी करने का इरादा किया जनाब मुख्तार के वालिद ने, तो पूछा कि कहाँ मैं शादी करूँ, कोई एक ऐसी खातून बताओ जो बाहया हो, पाकीज़ा हो। तो लोगों ने बताया कि अमर बिन वहब की बेटी दोमा से या रोमा से आप शादी करें। तो उसके बाद फिर ये भी मिलता है कि उन्होंने ख्वाब देखा, जब मुख्तार बत्न में थे, तो ये ख्वाब देखा कि एक ऐसा तुम्हारे शिकम में बच्चा है कि जो शुजा है, बहादुर है, और जो मिसले शेर है, शेर की तरह है, वो जंग करेगा। उसके बाद ऐसा होता है कि जब विलादत होती है तो फिर उसी शख्स को जिसने उन्होंने ख्वाब में देखा था, फिर उसी को देखा कि यही तुम्हारा वो बेटा होगा कि जो गोया एक बड़ा अजीम कारनामा अंजाम देगा। ये जनाब मुख्तार का जो एक फैमिली बैकग्राउंड है वो इस तरह से है। जनाब मुख्तार के ख़ास तौर पर साद बिन मसूद सकफ़ी जो चचा हैं, उनका एक बड़ा नाम है। इब्न असीर ने अपनी तारीख में लिखा है कि जंगे सिफ़ीन में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें कबीले ताइफ़ और ताइफ़े कैस और अब्दुल कैस का कमांडर बनाया था, उनकी बागडोर इनके हवाले की थी चचा के जनाब मुख्तार के। और फिर जनाब इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने भी उनको अपनी जो विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब मुख्तार के चचा को दी थी, उस पर बाकी रखा।
अच्छा, मैं यहाँ पे यही सवाल पूछने चाह रहा था आपसे कि ये वही चचा हैं हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब मदाइन
जी
तशरीफ़ लेके जाते हैं तो इनके घर
घर पे
पे जाते हैं और वो जनाब मुख्तार से एक वाकया मंसूब है। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा फिर इसी सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी बात हो रही है मुख्तार और उनके ख़ानदान के हवाले से। आपसे जो सवाल मैंने किया
जी
कि वो वाक़या जो हमें तारीख में मिलता है कि इमाम हसन मदाइन तशरीफ़ ले गए और चचा के घर में जनाब मुख्तार के क़याम किया है, तो आया ये इस वाक़े में किस हद तक सदाकत है कि कहते हैं जनाब मुख्तार ने अपने चचा से ये तकाज़ा किया था कि इमाम हसन को गिरफ़्तार करके और माविया के हवाले कर दिया जाए?
जी तारीख में इस बात का तذکرہ मिलता है कि यानी सईद बिन मसूद सकफी जो मदाइन के वाली थे, जब इमाम मुज़्तबा अलैहिस्सलाम उनके घर पहुँचे हैं तो यानी उनसे ये तकाज़ा किया गया। अब ये तकाज़ा जनाब मुख्तार ने किया या किसने किया, इसके अंदर कुछ गुफ्तगू है। अलबत्ता ये भी मिलता है कि जनाब मुख्तार के सिलसिले में कि मुख्तार ने ये कहा कि इस वक्त अच्छा मौका है इमाम हसन मुज़्तबा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके अमीर शाम के हवाले कर देते हैं, तो हम गोया हर तरह से यानी एक तरह एक अपनी हुकूमत के पायों को भी मजबूत करेंगे इस अमल के ज़रिए से, और एक बेइंतहा सरवत भी हम इससे पा सकते हैं। लेकिन और फिर उसके जवाब में जनाब मुख्तार के चचा ने कहा, कब्बल्लाहु फी रायक, यानी कितनी मजमूम तुम्हारी बात है, कितनी गलत बात है, ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। देखें, इसमें ये होता है कि जब कोई अजीम और बड़ी शख्सियत हो जाती है और कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे देती है, तो बहुत सारे लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, और जनाब मुख्तार भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वाकई करबला के बाद, करबला को इस दर्दनाक अंदाज़ में, इस सानहे के बाद, वो तमाम लोग के जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, उनसे कोई इस अंदाज़ में बदला लेगा और इतनी जल्दी वाकई
जी
करबला के
बिल्कुल,
बाद। तो बहुत सारी मनगढ़ंत चीज़ें दाखिल की गई और उन शख्सियतों के चेहरों को गोया मख्तूश करने की कोशिश की गई कि जिन्होंने अहले बैत से अपनी उल्फत का, एक उनसियत का इजहार किया और एक मोहब्बत का इजहार किया, कि अहले बैत के घराने का एहतराम किया, ख़ास तौर पे ऐसी शख्सियत के जिन्होंने अहले बैत का मसलन एहतराम किया और उनसे एक उनसियत, एक मोहब्बत, एक उल्फत का इजहार किया, लोग अदावत में उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो अब जैसा कि हमने, यानी आपने देखा होगा, कहीं बयान किया या शायद गुफ्तगू हुई थी कि इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये, कि इमाम अपने वालिद बुजुर्गवार को जंग के लिए रोक रहे हैं, हसन ने
जी
कहा,
हाँ
जबकि वो हसन बसरी थे और अलग था, नाम में इश्तबा हुआ था, गलती हुई थी। कभी कभी नाम में होता है, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं जानबूझ के ऐसे नाम को बीच में जोड़ा जाता है। हमारे जो बुजुर्ग अफराद हैं कि जिन्होंने रिजाल के ऊपर काम किया है, ख़ास तौर पर शख्सियतों को जो पहचानते हैं, उनमें एक शख्सियत है अतुल्ला खुई की। आगे खुई ने अपनी मोजम रिजाल में गुफ्तगू की है और इस सिलसिले में बहस की है, ख़ास तौर पर इस हदीस के सिलसिले में, कहा कि ये रिवायत मुरसला है, इस रिवायत को हम कबूल नहीं कर सकते। मुरसला यानी बीच में जो वास्ते हैं वो टूटे हुए हैं, लिहाजा ये तमाम तर वो वास्ते, वो हल्के नहीं हैं कि जिनके ज़रिए से हम ये कहें कि ये रिवायत मसलन काबिल कबूल हो सकती है। अपनी मंजिल तक ये रिवायत नहीं पहुँच रही, बीच में रावियों का नाम मसलन उड़े हुए हैं। अल्लामा मुहक्किक बाकिर महमूदी फरमाते हैं कि ये रिवायत आम्मा ने नकल की है और हम इसको बहुत ज़्यादा इसको कबूल नहीं कर सकते हैं, चूँकि ऐसा नहीं है कि मुख्तार, जो कि गोया तकरीबन जिनके लिए कहा जा सकता है कि ख़ानदान अहले बैत इसमें तो तहारत से बचपन से आशना थे और करीब रहे हैं और एक उनसियत रही है, एक मोहब्बत रही है, इमाम अली रसूलुल्लाह के सिलसिले में मिलता है कि आप ने बचपने में जनाब मुख्तार को अपने जानों पर बिठाया और अपने, ख़ास तौर पे ये अजीब रिवायत है, असबक बिन नवाता से रिवायत है, इमाम के सहाबी हैं, कि असबक कहते हैं कि इमाम ने अपने जानों पर जनाब मुख्तार को बिठाया और बैठा के कहा कि कईस या कईस, कितना जहीन और कितना होशियार है ये बच्चा। इसी को मरहूम मुकर्रम इस तरह से फरमाते हैं कि ये इमाम का जो कहना कि कईस कितना होशियार है, कितना होशियार है ये बच्चा, इस बात की तरफ इशारा है कि एक ज़माना ही आएगा कि अपनी तदबीर, अपनी हिकमत और अपनी होशियारी को इस्तेमाल करते हुए ये मुख्तार एक ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जो गोया एक तारीख बकौल आपके रकम करने में कामयाब हो जाएगा,
हाँ, यानी इमाम उस वक्त मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहे हैं,
गोया एक तरह
पेशनगोई कर
से
रहे हैं।
मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहे थे। और इसके ज़रिए से इमाम ये बताना चाह रहे थे कि यानी अगर कोई शख्स होशियार है तो उसके अंदर की होशियारी को गोया आप समझो और दर्क करो, और गोया अतराफ के लोग भी इस बात को समझें कि मुख्तार कईस हैं, और मुख्तार की कियासत और होशियारी की मिसाल भी आपको मिलती है। कि आप देखेंगे जब तवाबीन का क़याम है, मुख्तार जेल में है, तवाबीन का क़याम ख़त्म होता है, फिर दो दो तीन बार ऐसा होता है कि मुख्तार जेल में आते हैं, जेल में निकलते हैं, जबकि शायद किसी एक बुज़ुर्ग इन्हीं लोग की बड़ी शख्सियत का कहना यह है कि जो आले यजीद और आले मरवान से मुतालिक थी, कि कहती है कि ताज्जुब है मुझे कि जब मुख्तार को जिंदान में होना चाहिए तो वो मसलन मैदान में है, जब मैदान में होना चाहिए तो जिंदान में है। यानी ये एक ख़ास चीज़ रही है जनाब मुख्तार के अंदर, एक होशियारी, एक समझदारी, एक तदबीर। और इन्हीं तदबीर और होशियारी और इसी यानी इन्हीं आपके मज़बूत पहलुओं की बुनियाद के ऊपर ऐसा आप करने में कामयाब रहे कि एक बड़ा आपने क़याम किया और कातिलीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके कैफ़र किरदार
अच्छा,
तक
ये जो
पहुँचाया।
नुक्ता आपने बयान किया ये भी बड़ा अजीब है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा होना चाहिए था उस वक्त मुख्तार जिंदान में, और जब जो है वो उनको जिंदान में होना चाहिए तो मैदान में नजर आते हैं।
जी
दरअसल ये एक खुदा की तरफ से भी उनको महफूज रखने के लिए
जी
कुछ असबाब फराहम किए हैं कि बाद में खुदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लेना है शायद,
जी
एक अलबत्ता ये
खुदा
नजर एक
की यानी ये खुदा की कुदरत है बहरहाल कि देखें एक बड़ा इनकलाब लाना था जनाब मूसा के जरिए से, तो मूसा को पलवाया वहीं
फिरौन के,
दरबारे फिरौन ही में।
बिल्कुल
अब एक बड़ा इनकलाब लाना था जनाब मुख्तार के जरिए से, तो जिंदान में है, वो भी इब्ने
जिंदा
ज़ियाद
में,
के जिंदान में है, और फिर
बिल्कुल।
इब्ने ज़ियाद ही मजबूर होता है कि उन्हें आज़ाद करे, और फिर
अतराफ के लोग भी जो हैं वो भी
वो भी ये कह रहे थे जिस
बिल्कुल
तरह से जनाब मूसा के लिए लाके लोग कह रहे थे कि ये एक ऐसा बच्चा है जो तेरी सल्तनत को उलट देगा पलट देगा, इसी तरह से जो डर रहे थे लोग जैसा कि मसलन उमर साद शेमुन जैसे लोग आके खुद कहते हैं, बिन यजीद से भी कहते हैं और इब्न आज़ाद तक भी ये पैगाम पहुंचाते हैं कि ये वो शख्स है कि जो हमारी हुकूमत के लिए ख़तरनाक है, लेकिन ये एक खुदा की कुदरत और बहरहाल।
अच्छा, बात हो रही है जनाब मुख्तार के ख़ानदान के हवाले से, तो चलें अगर इस पहलू को हम अपनी नज़र में भी रखें,
जी
सुलह इमाम हसन मदाइन में जब इमाम हसन है और वहाँ पर ये बात अगर हम कहते हैं कि चलो बिलफर्ज ही कहा भी, क्या हमें ख़ानदान में जनाब मुख्तार के वालिद, चचा, दादा या कोई और भाई, उनके किसी भाई की तरफ से भी कोई इस तरह की चीज़ मंसूब नज़र आती है कि रसूल अल्लाह के किसी बात के खिलाफ या रद्द अमल में कोई इजहार किया हो, या इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे खड़े हों, या जितने भाई हैं उनके उनमें से किसी के साथ ऐसी चीज़ कोई नज़र आती है हमें?
यानी फ़िलहाल जो इनके भाइयों का जो जहाँ तस्करा है या जितने हमने नाम लिए मेरे पेश नज़र तो नहीं है, अब यानी हमें नज़र से नहीं गुज़रा कोई इस तरह की चीज़ के उसने कोई मुखालफत की हो अहले बैत अथहार अलैहिस्सलाम की,
वालिद और
यानी
दादा वगैरह,
दादा वगैरह ने कतअ
क्योंकि
नहीं।
जैसे आपने जिक्र किया कि वो तो
जी
जंगों में पेश पेश रहे
जी
और
वो
उनको
बल्कि
सिपा
उसके
सालार।
उनका सबका इसके बरखिलाफ़ दिखाता है, यानी अगर किसी भी शख्स के बारे में अगर कोई शायबा पाया जाता है, कोई जहन में एक शुबा है कि ये शख्स मसलन किस तर्ज़ फ़िक्र का हामिल है, तो उसके सबक और उसके माजी को देखा जाता है। अगर माजी दरख्शा होता है तो इंसान कहता है कि नहीं इसका माजी इतना दरख्शा है, इतने अच्छे घराने से, इन लोगों ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की, तो कैसे हो सकता है, उसके बाद ये हुक्म लगाया जाता है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर किसी के माजी के अंदर कुछ खराबियाँ हों तो मुमकिन है, कहा जाए कि भाई बाप दादा इनके ऐसे थे तो हो सकता है ये भी
जी
ऐसे
बिल्कुल,
हों।
मैं बस इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था। अच्छा, ये एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जनाब मुख्तार के बारे में हमें दो तरह की रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत कह उनकी मजम्मत में, एक रिवायत का आप कह लें
हिस्सा
हिस्सा उनकी मजम्मत में, और दूसरा हिस्सा उनकी मद में
जी
जो उनकी तारीफ कर रहा है और बहुत अच्छे अंदाज में उनको पेश कर रहा है। तो जब तारीख का मुताला करने वाला किस तरफ जाए,
जी
इसका क्या हल है हमारे पास?
जी यकीनन रिवायात के ज़खीरे में बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो जनाब मुख्तार की शख्सियत, उनके क़याम को और उनके हदफ़ के सिलसिले में पाकीज़ा हदफ़ को बयान कर रही हैं कि आला हदफ़ था और उनकी फ़िक्र एक आली फ़िक्र थी, पाकीज़ा सोच थी, और इसी तरह उनकी शख्सियत को भी बयान कर रही हैं कि एक ज़ाहिद आबिद एक ऐसी शख्सियत थी कि जो मसलन दिनों को रोज़ा रखते थे, रातों में इबादत किया करते थे। इसके बरखिलाफ़ कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि मसलन जिनमें नकल है कि मसलन इमाम के पास उन्होंने कोई हदिया भेजा, इमाम ने उसको रद्द कर दिया। तो आगा खुई ने दोनों तरह की रिवायत मजम्मत में जो आई हैं उनको और जो मदह में आई दोनों को बराबर बराबर रख कर जो नतीजा दिया है वो नतीजा यकीनन हमारे लिए काबिल पैरवी हो सकता है। आपने फरमाया कि दोनों तरह की रिवायत को मैंने देखा, वो तमाम रिवायतें जो जनाब मुख्तार की मजम्मत में आई हैं या तो वो तकिये की बुनियाद के ऊपर हैं जो मजम्मत में आई हैं, या उनकी सनद ज़ईफ़ है और दलालत के अतबार से उनके अंदर कुछ कमी पाई जा रही है। वो ज़्यादातर रिवायतें बेहतर हैं और अहसन हैं और काबिल कबूल हैं कि जिनके अंदर जनाब मुख्तार की मदह की गई है। लिहाजा नतीजतन हम ये नतीजा लेंगे कि अगर कहीं इधर उधर कोई ऐसी रिवायत अगर आई है तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई ज़ाफ़ है जिसमें मदह के बजाय
बिल्कुल
मजम्मत की
सही
गई।
फरमाया आपने। किसी भी चीज़ की मालूमात के लिए या किसी भी इल्म की आशनाई के लिए ये अकली बात है कि हम उसके मुतखसिस के पास और उसके पास जाते हैं जो
स्पेशलिस्ट
उसका
के पास हम
स्पेशलिस्ट
जाते
हो।
हैं। जी
तो ऐसे मामलात में हमें अपनी तरफ से नतीजा देने की और इज्तिहाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये चाहिए नाज़रीन कि हम उस इल्म के या उस मालूमात रखने वाले शख्स से रुजू करें, और जिस चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं है फिर उसकी बात को और जो हुक्म वो दे उसके ऊपर अमल करें, उसको माने, ताकि हम बेहतर अंदाज में अपने इल्म को आगे बढ़ा सकें, अपने इल्म में इजाफा कर सकें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।